नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी पुलों का नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यूरिया समेत किसी खाद की कोई कमी नहीं है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। और मॉनसून ने केरल में दी दस्तक, 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कर उनके निकटतम परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस टीम को मामले के हर बिंदु की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित उपचार के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी पुलों के नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। पटना में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने कहा कि सड़क और पुल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने मुंगेर परियारपुर भागलपुर सबौर फोरलेन गंगा पथ परियोजना का निर्माण पीपीपी मॉडल के तहत कराने को कहा। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरतों को देखते हुए ग्रामीण सड़कों की चौड़ीकरण की योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने ग्रामीण सड़कों की नियमित निगरानी और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य में 3,76,000 मीट्रिक टन यूरिया, 1,54,000 मीट्रिक टन डीएपी, 2,38,000 मीट्रिक टन एनपीके और 1,70,000 मीट्रिक टन एसएसपी का भंडार उपलब्ध है। यह भंडार जरूरत के अनुरूप पर्याप्त है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरक वितरण में अनियमितता की जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता टीम गठित की गई है और कालाबाजारी तथा जमाखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि रोजगार मेले के तहत मई महीने में 10,882 युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने रोजगार प्रदान किया। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जुलाई महीने तक 20,000 और युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है।
10,882 लोगों को अभी मई महीने में हमने रोजगार से जोड़ा और आगे फिर जुलाई तक, जुलाई से पहले हम लोग कम से कम 20,000 लोगों को और रोजगार से जोड़ेंगे और प्रत्येक 2 महीने पर ये रोजगार मेला लगाएंगे।
इधर विभाग की ओर से दरभंगा के अलग अलग प्रखंडों में आज से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेले 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में आयोजित होंगे। खगड़िया और मोतिहारी में भी आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अब 99% एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और 96% से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी ओटीपी के माध्यम से की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना आवास पर आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, मंत्री दिलीप जायसवाल और रामकृपाल यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में विधान परिषद चुनाव को लेकर रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए में जल्द ही सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस संबंध में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के बीच विचार विमर्श जारी है।
विधान परिषद के कौन कौन उम्मीदवार होंगे वो सब बड़े नेता मिल बैठ के तय कर रहे हैं। एक्सरसाइज जारी है, समीक्षा हो रही है, बहुत जल्द ही आप तक निर्णय पहुंचाएंगे।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि राज्य में संगठन का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब डिजिटल माध्यम से प्रखंड अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक का चुनाव होगा। श्री राम ने कहा कि पार्टी ने डिजिटल माध्यम से ही सृजन साथी नामक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं।
अपने चुनाव परिणाम से भूल को, सबक को लेते हुए हम संगठन सृजन के माध्यम से अपनी संगठन को तैयारी कर रहे हैं। हम अपने संगठन को संतोषजनक हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये माध्यम इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि कोई भी व्यक्ति अनुशंसा पर अब नहीं बनता है। संगठन सृजन साथी अभियान से ये ट्रांसपेरेंसी है और वही चयन होकर के आएंगे जो अपने आप को मजबूती दिखाए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को नई पहचान मिली है और करोड़ों लोगों ने इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाया है।
एक दशक पहले भारत संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव लेकर गया था। हम प्राचीन भारतीय परंपरा को पूरी मानवता के स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण से जोड़ना चाहते और तब यूएन में 190 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव को समर्थन किया। आज यह देखकर बहुत खुशी होती है कि करोड़ों लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं।
दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने केरलम में दस्तक दे दी है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 3 दिन देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने कहा कि 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते मॉनसून बिहार में दस्तक दे सकता है। इसके बाद यह राज्य के अन्य हिस्सों में पहुंचेगा। अनुकूल परिस्थितियां रहने पर 25 जून तक पूरे राज्य में मॉनसून की बारिश शुरू होने की संभावना है। प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं कल राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
दिनांक 5 जून राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
वयोवृद्ध फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज नीलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। पहलाज नीलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहलाज नीलानी के निधन पर दुख जताया है। श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय फिल्म जगत में उनके योगदान और रचनात्मक कार्यों को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भागलपुर जिले के गोपालपुर के पोखरिया चौक के पास अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने कारोबारी के सिर में 7 गोलियां मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पटना पुलिस ने एक कोचिंग संस्थान के सुरक्षा गार्ड द्वारा फायरिंग के मामले में 2 गार्ड को हिरासत में लिया है। घटना में प्रयुक्त हथियारों को जब्त कर FSL जांच के लिए भेज दिया गया है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के कोढ़ी चौक के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक यात्री बस से 708 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के हनुमान चौक के पास पुलिस और SSP की टीम ने 110 किलो गांजा के साथ 1 तस्कर को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र और परसा बिघा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 700 लीटर शराब और बियर बरामद की है। गया रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल और GRP की टीम ने 3 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत आज शिवहर के तरियानी प्रखंड के अलग अलग गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेखपुरा मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निशुल्क विधिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई। रोहतास जिले के आलमपुर पंचायत भवन में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सीनियर अंडर 23, अंडर 19 और अंडर 15 वर्ग की T20 और वनडे प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। प्रतियोगिताओं की शुरुआत 8 जून से होगी और मैच पटना, भागलपुर तथा सोनपुर के विभिन्न मैदानों पर खेले जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी पुलों का नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यूरिया समेत किसी खाद की कोई कमी नहीं है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। और मानसून ने केरलम में दी दस्तक, 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।